कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की हलचल जैसे अचानक कट गई, लेकिन आर्यन के भीतर का शोर बढ़ता ही जा रहा था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहा था। माथे की नसें तनी हुई थीं और हाथ बार बार बालों में जा रहे थे। वो खुद से बुदबुदाया, ये सब गलत हो रहा है, दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। नहीं, अब बस पापा को बताना ही होगा। उसने विश्वनाथ का नंबर मिलाया, रिंग रिंग, लेकिन कॉल नहीं लगा। स्क्रीन पर दिखा, दूसरे नंबर पर व्यस्त। उसकी सांस और तेज़ हो गई। उठाओ पापा, प्लीज़ उठाओ। उसने फिर कॉल लगाया, फिर और फिर, एक बार तो उठाओ। उसकी आवाज़ अब प्रार्थना जैसी हो गई थी। उसे साफ दिख रहा था, अगर अभी कुछ नहीं किया तो शामली इस घर से निकाल दी जाएगी और वो ये होने नहीं दे सकता था। कॉल फिर नहीं लगा। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ा, मैं करता रहूँगा, कभी तो उठाओगे। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और अदिति अंदर आई। उसकी चाल शांत थी, चेहरा बिल्कुल संतुलित, जैसे बाहर कुछ हुआ ही नहीं। आर्यन ने उसे देखा भी नहीं और फिर कॉल करने लगा। तभी अदिति आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे उसके हाथ से फ़ोन लेकर टेबल पर रख दिया। आर्यन चौंक गया, अदिति ये क्या, मुझे पापा को फ़ोन करना है, दादी का फ़ैसला गलत है। उसकी आवाज़ भारी थी। अदिति ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, अगर तुमने पापा को फ़ोन किया। आर्यन रुक गया, उसने उसकी तरफ देखा। अदिति की आंखों में अब नरमी नहीं थी, वहां ठंडापन था, सोचा समझा हुआ। तो मैं भी इस हवेली में सबको बता दूंगी कि तुम और शामली पहले प्यार में थे। कमरे की हवा जम गई, आर्यन का चेहरा सुन पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम, अदिति आगे बढ़ी। फिर तुम जानते हो ना कितना अच्छा लगेगा सबको ये सुनकर कि आर्यन अपनी ही सौतेली माँ से प्यार करता था, जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। बस वो गर्जा, एक शब्द और नहीं। लेकिन अदिति रुकी नहीं। सोचो कैसा लगेगा, पूरी हवेली, रिश्तेदार, लोग सब सुनेंगे कि आर्यन का रिश्ता अपनी सौतेली माँ के साथ था। धड़ाम, आर्यन ने झपटकर उसका गला पकड़ लिया। अदिति दीवार से जा टकराई, उसकी आंखें फैल गईं। आर्यन की पकड़ मजबूत थी। तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला, उसकी आवाज़ गुस्से, चोट और डर से कांप रही थी। अदिति ने उसकी पकड़ के बावजूद हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। उसने धीरे से कहा, जहाँ से चलना था चल गया। कमरा एकदम शांत हो गया। आर्यन की पकड़ ढीली नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, घबराहट भी थी, क्योंकि इसका मतलब था कोई और जानता है या कोई जानना चाहता है। अदिति फुसफुसाई, सच छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आर्यन ने उसे छोड़ दिया, वो एक कदम पीछे हटा। सांसें भारी थीं, दिमाग दौड़ रहा था। अदिति ने गला सहलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। फ़ोन मत करना, उसने शांत स्वर में कहा, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा जम गया। बाहर हवेली में शामली पर शक था और यहाँ उसके अपने अतीत को हथियार बना लिया गया था। आर्यन ने थके स्वर में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अदिति ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते बचाने के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ता है। उधर हवेली के बड़े दरवाजे के पास एक अजीब खामोशी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई शामली के हाथ में सिर्फ एक सूटकेस था, बस इतना ही। ना कोई शोर, ना बहस, ना सफाई, जैसे वो समझ चुकी थी कि अब कुछ कहने से कुछ बदलेगा नहीं। आंगन में सब खड़े थे। रत्ना देवी स्थिर थीं, सुषमा देवी की आंखों में छुपा संतोष था, शकुंतला चुप थी, अतिथि दूर खड़ी थी बिना भाव के, लेकिन कुछ चेहरों पर दर्द साफ दिख रहा था। विशाल की आंखें झुकी हुई थीं, मधु आंचल से बार बार आंखें पोंछ रही थी। बाकी नौकर भी दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे घर की सदस्य नहीं अपना कोई जा रहा हो। सबसे आगे रम्या खड़ी थी, आंखें लाल। आर्यन थोड़ा पीछे खड़ा था, जड़, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो। शामली दहलीज तक पहुंची। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा, वही हवेली जहां उन्होंने घर बसाया था, जहां रिश्तों पर भरोसा किया था, लेकिन आज कोई भी प्यार से उनकी तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ कुछ टूटे हुए दिल चुप खड़े थे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, रम्या दौड़कर उनके पास आई। मामी जी मत जाइए ना, आपने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ। उसने उनका हाथ पकड़ लिया, प्लीज मत जाइए। शामली ने उसे देखा, आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ थकान। उन्होंने धीरे से उसका हाथ सहलाया, चिंता मत करो, अभी जाने दो मुझे। रम्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन शामली ने हल्की मुस्कान दी, जब विश्वनाथ जी आएंगे तो मुझे लेने जरूर आएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। आर्यन ने सिर उठाकर उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। विशाल ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की पर रुक गया। शामली ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, मुड़ी और कार की तरफ बढ़ गई। मधु फूट पड़ी, ठाकुराइन, लेकिन आवाज़ दबा दी गई। कार का दरवाज़ा खुला, शामली बैठी। एक बार फिर हवेली की तरफ देखा, इस बार आंखों में नमी थी। कार चल पड़ी, धीरे धीरे हवेली की दहलीज पीछे छूट गई। रम्या वहीं खड़ी रह गई, आर्यन स्थिर, विशाल चुप, और हवेली जैसे कुछ खो चुकी थी। कार के ओझल होते ही जैसे आंगन की हवा और भारी हो गई। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक आर्यन आगे बढ़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी, आंखों में दर्द था लेकिन आवाज में ठहराव। दादी, उसकी आवाज ने सबको चौंका दिया।
रत्ना देवी ने उसकी ओर देखा। आर्यन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आज आपने गलती की है। सुषमा देवी तुरंत भड़क उठी। आर्यन, ये बात करने का तरीका है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा। उसकी नजर सिर्फ रत्ना देवी पर थी। पापा ये सब सहन नहीं करेंगे। आंगन में सन्नाटा और गहरा गया। जब वो आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि बिना सबूत बिना सच जाने आपने श्यामली को घर से निकाल दिया। उसने गहरी सांस ली। तो जवाब देना होगा दादी, सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी। रत्ना देवी की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। आर्यन की आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा लग रहा था। आज आपने एक बहू को नहीं निकाला। उसने हवेली की ओर देखा। घर का भरोसा निकाला है। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार रत्ना देवी के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा उभरी।